उद्भेदन या एमनियोसेंटेसिस एक प्रसव पूर्व परीक्षण है जिसका उपयोग मूल रूप से भ्रूण में आनुवंशिक विकारों जैसे डाउन सिंड्रोम और स्पाइना बिफिडा और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के निदान के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में परीक्षण के लिए गर्भवती महिला के भ्रूण के चारों ओर उपस्थित एमनियोटिक द्रव का एक छोटा सा नमूना निकालना शामिल है। उद्भेदन या एमनियोसेंटेसिस क्यों किया जाता है? एमनियोसेंटेसिस का लक्ष्य डाउन सिंड्रोम या स्पाइना बिफिडा जैसी शारीरिक असामान्यताओं का पता लगाना है। इससे शिशु के लिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करने में भी मदद मिल सकती है। एमनियोसेंटेसिस केवल उन गर्भवती महिलाओं के लिए किया जाता है जिनके आनुवंशिक या क्रोमोसोमल स्थिति वाले बच्चे को जन्म देने की संभावना अधिक होती है। यदि चिकित्सीय या पारिवारिक इतिहास है जो आनुवंशिक या क्रोमोसोमल स्थिति वाले बच्चे के होने की अधिक संभावना का सुझाव देता है तो इससे मदद मिलती है। इसका उपयोग भ्रूण के फेफड़ों की परिपक्वता की जांच करने के लिए किया जाता है जब समय से पहले जन्म या गर्भाशय संक्रमण की संभावना होती है और RH रोगों का पता लगाने के लिए किया जाता है। उद्भेदन या एमनियोसेंटेसिस कैसे किया जाता है? एमनियोसेंटेसिस मूल रूप से गर्भावस्था के 15वें और 20वें सप्ताह के बीच एक लंबी सर्जिकल सुई की मदद से किया जाता है जहां भ्रूण के आसपास के एमनियोटिक द्रव को बाहर निकाला जाता है। भ्रूण की हृदय गति, प्लेसेंटा, भ्रूण, गर्भनाल की स्थिति को स्कैन करने और एमनियोटिक द्रव का पता लगाने के लिए सभी प्रक्रिया एक अल्ट्रासाउंड छवि द्वारा निर्देशित होती है। एक लंबी पतली खोखली सुई को बच्चे के चारों ओर उपस्थित एमनियोटिक थैली में डाला जाता है और विश्लेषण के लिए एमनियोटिक द्रव का एक छोटा सा नमूना निकाला जाता है। परीक्षण में लगभग 10 मिनट लगते हैं, हालांकि पूरी प्रक्रिया में लगभग 30 मिनट लग सकते हैं। एकत्रित द्रव को जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा जाता है। उद्भेदन या एमनियोसेंटेसिस के जोखिम। एमनियोसेंटेसिस से जुड़े मुख्य जोखिमों में से एक गर्भपात है जो बच्चे से रक्तस्राव के परिणामस्वरूप हो सकता है या किसी संक्रामक बीमारी, झिल्ली के टूटने या सहज प्रसव के परिणामस्वरूप हो सकता है। यदि आपातकालीन स्थिति में गर्भावस्था के 15वें सप्ताह से पहले एमनियोसेंटेसिस कराया जाए तो इसका जोखिम अधिक हो जाता है। यही कारण है कि परीक्षण केवल इस चरण के बाद ही किया जाता है। एथन, धब्बे या एमनियोटिक द्रव का रिसाव देखा जाता है। लगभग 100 में से 1 से 2 महिलाओं को ये समस्या होती है। प्रमुख जटिलताओं में एमनियोटिक थैली का संक्रमण, समय से पहले प्रसव, श्वसन संकट, भ्रूण की विकृति, आघात और पंचर घाव का ठीक न हो पाना शामिल है। एमनियोसेंटेसिस के साथ गर्भपात का खतरा। एमनियोसेंटेसिस के बाद गर्भपात एमनियोटिक थैली या एमनियोटिक झिल्लियों को क्षति, एमनियोटिक द्रव खोने, रक्तस्राव या संक्रमण के कारण संभव है। एमनियोसेंटेसिस दर्दनाक नहीं है, लेकिन प्रक्रिया के दौरान महिला असहज महसूस कर सकती है। जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली महिलाओं में जोखिम अधिक होता है। महत्व। एमनियोसेंटेसिस अन्य परीक्षणों में पाई गई असामान्यता का निदान करने में मदद करता है। भ्रूण की असामान्यता का पता लगाने के लिए जिस पर संदेह किया गया था, चयापचय संबंधी विकार जैसे एंजाइम, प्रोटीन आदि की कमी का आकलन और उसके अनुसार इलाज किया जा सकता है। गुणसूत्र संबंधी असामान्यता का निदान। यदि विकासशील भ्रूण में कोई जन्मजात विकार पाया जाता है तो आगे की जटिलताओं से बचने के लिए मां गर्भपात करा सकती है। पारिवारिक इतिहास और परीक्षण की उपलब्धता के आधार पर अन्य दोषों का निदान। एमनियोसेंटेसिस पर प्रतिबंध क्यों है? इस तकनीक का उपयोग विकासशील भ्रूण के जन्म पूर्व लिंग निर्धारण के लिए किया जा सकता है। इससे कन्या भ्रूण हत्या में वृद्धि हो सकती है। भारत सरकार ने प्रतिकूल लिंगानुपात का कारण बनने वाली बढ़ती कन्या भ्रूण हत्या को कानूनी रूप से रोकने के लिए प्रीनेटल डायग्नोस्टिक तकनीक अधिनियम के तहत इस तकनीक पर वैधानिक प्रतिबंध लगा दिया है। अभ्यास प्रश्न। एमनियोसेंटेसिस के जोखिम क्या है? एमनियोसेंटेसिस क्या है? एमनियोसेंटेसिस से गर्भपात का खतरा क्यों होता है?